नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बाधित किया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में इन क्षेत्रों में विकास पहुंच रहा है। श्री शाह ने कहा कि हथियार उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा। गृहमंत्री लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।
जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे, किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूँ, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाए उसको हिसाब इस तरह से नहीं चलेगा।
श्री शाह ने कहा कि रेड कॉरिडोर 12 राज्यों में फैला हुआ था और वामपंथी हिंसा में 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 12 करोड़ लोग वर्षों तो गरीबी में रहे और प्रभावित क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद को देश से खत्म कर रही है। उन्होंने अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस बलों और देश में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान से जुड़े लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नक्सलवाद के खतरे से निपटने में अपनी जान गंवाने वाले युवाओं और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था कि नक्सलवाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस के सप्तगिरी शंकर उल्का ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया और 2008 में कोबरा यूनिट की स्थापना की गई। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और स्कूलों का निर्माण किया गया था। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश की यूरिया इकाइयां वर्तमान में 80% क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के अलावा अन्य स्रोतों से उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है।
देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बातचीत का उद्देश्य आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना और राज्य के विकास को उजागर करना था। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि केरल, असम और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों में 2,37,000 से अधिक मतदाता घर पर मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख को होगा। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के अंतर्गत कंपनियों को मंजूरी पत्र सौंपे। कुल 29 आवेदनों को 7,100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की मंजूरी दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 ओवर में 3 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।